وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکات کا حکم دینے والے تھے. حالانکہ دیکھیں جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ اور ان کے اوپر لوگوں کو وہ دعوت دینے کا کام ہوتا ہے, ان کا کام کتنا زیادہ ہوتا ہے, کسی بھی عام انسان کے کام سے بہت زیادہ ان کا کام ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کو نگلیکٹ نہیں کر رہے, اپنے گھر والوں کو وہ پھر کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا حکم ہوا, وانذر عشیرتک وانذر عشیرتک الاقربین سورہ شعراء میں, کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کیجیے. یعنی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو دیکھے کہ میرے گھر والے کیا کر رہے ہیں, میری بیٹیاں میرے بیٹے کس راستے پہ چل رہے ہیں, ان کو نماز کا حکم دینا, ان کو زکوٰۃ کا حکم دینا. زکوٰۃ میں تزکیہ بھی آ جاتا ہے, اندرونی اپنی طہارت, اور یہ بھی آ جاتا ہے زکوٰۃ کے اندر کہ چیریٹی دینا, جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. تو وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا, اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے, یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی تھا, اللہ کے محبوب ہیں وہ. اب دیکھیں محبوب بھی کیا باتوں سے بن گئے کہ وہ باتیں بس بہت اچھی کرتے تھے, محبوب وہ اس طرح سے بنے کہ ان کا یہ عمل تھا صادق الباد. اللہ تعالیٰ نے دیکھے ایسے تو سارے نبی صادق الباد ہیں, اور سارے نبیوں میں ساری خوبیاں ہیں, یہ خوبیاں ہیں, کمالات ہی کمالات ہیں. انسانی طور پہ ان میں بہت بہترین جو کمال کی صفات ہیں وہ سارے انبیاء میں, لیکن ہر ایک میں کوئی ایک کیریکٹرسٹک ایسی ہوتی ہے نا, کوئی ایک خوبی جو اس کی بہت نمایاں بہت ہائی لائٹڈ ہوتی ہے. تو ان کا یہ اللہ تعالیٰ نے وصف بیان کیا, ایک تو وہ صادق الوعد تھے اور ایک وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری مصروفیات کتنی بھی بڑھ جائیں ہم گھر والوں کو نگلیکٹ نہیں کر سکتے, یہ کہہ کے نہیں چھوڑ سکتے, ان کو کاری سب پڑھا دیتے ہیں, سنڈے اسکول ورس چلے جاتے ہیں, یا اسلامک اسکول میں میں نے ان کو ڈال دیا تو بس کافی ہو گیا. نہیں, آپ کو خود انیشیٹو لینا ہے, اور اس کے لیے خود نماز پڑھ کے دکھانی ہے, خود تزکیہ کا کام کرنا ہے, خود زکوٰۃ دینی ہے, خود ان چیریٹی کرنی ہے تاکہ وہ دیکھیں اور اس پہ چلیں, خود ان کو بار بار یاد دہانی. یا امرو میں ہے نا کانا اور یا امرو, جب کانا مضارع کے ساتھ آ جاتا ہے نا, یا امرو جیسے مضارع ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے اندر استمرار کا معنی آ جاتا ہے. استمرار مطلب کیا, یعنی کنٹینیوٹی کا, یعنی وہ کانسٹنٹلی کہتے رہتے تھے, ایسے نہیں بس ایک دفعہ کہہ دیا اب تو میں نے کہنا نہیں, نہیں کانسٹنٹلی وہ اپنے گھر والوں کو ایسی نصیحت کرتے رہتے تھے. تو اگر اسماعیل علیہ السلام کرتے رہتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے بچے انہوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, اور اچھے طریقے سے ان کو ہمیشہ کہنے کی کوشش کریں تاکہ ہم نے ان سے عمل کرانا ہے, ان کو چڑھانا نہیں ہے. ہم جب بچوں کی شادیاں کرتے ہیں اور ان کو زیور وغیرہ دیتے ہیں, ہم کیوں نہیں ان کو بتاتے کہ بیٹا اس کی آپ نے زکات بھی دینی, اور یہ میں نے آج کے دن آپ کو ہینڈ اوور کر رہی ہوں, اس کے 1 سال بعد آپ کے اوپر زکات اس کی آ جائے گی. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, اور کتنے نئے شادی شدہ جوڑا ان کو کتنے عرصے بعد پتہ چلتا ہے ہم نے زکات بھی دینی تھی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس, کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے. ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے, یہ کون تھے, ان کے بھی بارے میں آتا ہے, اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وہ بھی سچے تھے اور نبی تھے. دیکھیں کہنا آ رہا ہے نا, تو یعنی یہ بھی سچائی کے علم بردار تھے, سچے تھے. دیکھیں آج ہم اس دور میں رہ گئے ہیں جس میں سچائی تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں ملتی ہی نہیں, لوگوں میں اتنا جھوٹ ہو گیا ہے, ہر جگہ جھوٹ ہے. آپ یہ خاص طور پہ ہم یہ انٹرنیٹ اور اس کے اوپر جہاں پہ بھی جاتے ہیں, آپ فونز ہیں انٹرنیٹ, ان کے اوپر جھوٹ ہی جھوٹ, خبروں میں جھوٹ, جو دکھا رہے ہیں وہ ہے نہیں, جو ہے وہ دکھاتے نہیں ہیں. اسی طرح کوئی کچھ لکھ رہا ہے, کوئی کچھ ویڈیوز بنا رہا ہے, کوئی کلپ بنا بنا کے واٹس ایپ پہ ڈال رہا ہے, اور جھوٹے بالکل, نہ خود کچھ پتہ ہے نہ کچھ, بس جھوٹ جھوٹ ہر طرف. یہ جھوٹ کی دنیا ایسی ہے نا, جو دجال بھی ہو وہ بھی تو جھوٹا ہی ہے, اسی لیے تو کذاب ہے نا وہ. ڈسیپشن بھی تو جھوٹ ہی ہوتا ہے نا, جو دھوکا وہ دکھائے گا, چیز ہوگی کچھ اور دکھائے گا کچھ, اس کی جنت جہنم, اس کی جہنم جنت, تو یہ جھوٹ ہی تو ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں جھوٹ کتنا بڑھ گیا, سچائی کہیں ملتی ہی نہیں. और जो झूठा है उसको सच्चा समझा जाता है, जो सच्चा है उसको झूठा कहते हैं। ये भी कयामत के निशानियों में से है। तो देखिए वो कितने सच्चे थे, और सच्चाई अल्लाह ताला को कितनी पसंद है कि अल्लाह ताला उनकी ये खूबियां बयान फरमा रहा है, और सोचें कि झूठ अल्लाह को कितना नापसंद होगा। तो हम सच बोले, रिश्तों में सच बोले, हम अपने जिंदगियों में सच्चाई को लेकर आए। अच्छा, अब इदरीस अलैहि सलाम के बारे में ये आता है कि या तो वो नूह अलैहि सलाम के दादा थे, या नूह अलैहि सलाम के बाप के दादा थे, यानी दादा थे या उनके परदादा थे। और ये भी आता है कि आदम अलैहि सलाम और इनके दरमियान 1,000 साल का फासला था। इदरीस अलैहि सलाम यानी आदम अलैहि सलाम और नूह अलैहि सलाम के दरमियान बेसिकली ये आए थे, ठीक है। और ये इनका बहुत ज्यादा तो नहीं है हमें जिक्र मिलता, मगर इनके बारे में कई ऐसी क्वालिटीज आई आई हैं कि ये वो नबी हैं कि जिन्होंने सबसे पहले सितारों का इल्म इन्होंने जाना था सबसे पहले। और ये वो नबी हैं जो सितारों से, मतलब ये नहीं कि वो इल्म नुजूम, बल्कि ये वो जो सितारों को देख के और आप रास्ता पाते हैं किधर जाना है वो। फिर कलम से लिखना इन्होंने सबसे पहले शुरू किया था, फिर हिसाब किताब कैलकुलेशंस जो हैं ये इसका इल्म सबसे पहले इन्होंने लिया था, फिर कपड़ों को सीने का इल्म। फिर इससे पहले लोग ना खाली पहन लिया करते थे, तो इन्होंने कपड़ों के सीने का इल्म इन्होंने मतलब लिया था। और फिर उसके अलावा ये वो नबी हैं जिन्होंने जिनके बारे में ये आता है कि इन्होंने असलहा सबसे पहले इस्तेमाल किया था, तो असलहा भी इन्होंने बनाना शुरू किया था, और कपड़े सीने के आलात, फिर नाप तोल के आलात भी इन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे। नाप तोल होता है ना, उसके आलात जो होते हैं वो सबसे पहले। तो और इदरीस दर्स से कहते हैं, दर्स कि दर्स और तदरीस बहुत ज्यादा किया करते थे, यानी बहुत ज्यादा दर्स देते थे। तो इस ये इनकी कई खूबियां आती हैं जो कि डिफरेंट किताबों के अंदर आई हैं, डिफरेंट इनके यानी इनकी सिफात में। अच्छा, इनके बारे में जैसे यहाँ पे कहा गया वरफानाहु मकानन अलिया, और हमने इनको बुलंद कर दिया, हमने इनको बुलंद किया मकाम पर, बुलंद मुकाम पे। तो इसके दो माने आप देख सकते हैं, एक तो ये माना कि अल्लाह ताला ने इनके दर्जात को बुलंद किया, इनको इल्म अता फरमाया, इनके दर्जात बुलंद हुए। दूसरा इसराइली रिवायात से है, अभी मैं पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि उसमें इस इसराइली रिवायात को ना तो आप कह सकते हैं कि ये सही है और ना ही बिल्कुल गलत कह सकते हैं। तो इब्ने अब्बास ने हजरत काब अहबार से सवाल किया था, हजरत काब जो थे क्योंकि वो यहूदियत से इस्लाम में आए थे, तो बाज इसराइली रिवायात उनकी उसमें मिलती हैं कि इसका क्या मतलब है। तो आपने फरमाया कि इदरीस अलैहि सलाम के पास वही आई कि औलादे आदम के नेक आमाल के बराबर सिर्फ तेरे नेक आमाल मैं अपनी तरफ हर रोज चढ़ाता हूँ। जितनी औलादे आदम है ना उनके नेक आमाल के बराबर सिर्फ अकेले इदरीस अलैहि सलाम के आपके नेक आमाल मैं अपनी तरफ चढ़ाता हूँ। इस पर उनको ख्याल आया कि मैं अमल में और सबकत करूं, तो उनके पास उनका एक उनके पास एक फरिश्ता आता था जो उनका दोस्त बन गया था। तो उन्होंने उससे जिक्र किया कि मेरे पास ऐसे वही आई है, अब तुम मलक और मौत से कहो कि वो मेरी मौत में जरा डिले कर दे तो मैं नेक आमाल और ज्यादा बढ़ा लूँ, ज्यादा ज्यादा लंबी जिंदगी होगी तो ज्यादा नेक होंगे। उस फरिश्ते ने इनको अपने परों पर बिठा के आसमान पे चढ़ा दिया। जब चौथे आसमान पे पहुंचे तो मलक और मौत को देखा, फरिश्ते ने आपसे इदरीस अलैहि सलाम के बारे में सिफारिश की मलकुल मौत से। तो मलकुल मौत ने फरमाया वो कहाँ है, उसने कहा वो ये है मेरे बाजू पे मेरे पर पे बैठे हैं। उस मलकुल मौत ने कहा सुभान अल्लाह, मुझे तो ये हुक्म हुआ था कि इदरीस अलैहि सलाम की रूह कब्ज करनी है इस आसमान पे, तो मैं सोच रहा था कि वो कैसे यहाँ आएंगे, वो तो जमीन पे होते हैं, तो ये वो यहाँ पहुंच गए। तो वहां पे उनकी रूह कब्ज करने का हुक्म हुआ, वहां पे उनकी रूह कब्ज की गई, और उनका जमीन पे उनकी कोई भी कब्र नहीं है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे तो ये तो ऑथेंटिक बात है कि वो चौथे आसमान पे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले थे, ये इदरीस अलैहि सलाम। अब अल्लाह आलम इसमें कितनी हकीकत है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मगर ये भी एक रिवायत है। उलाइक अल्लदीना अनअम अल्लाह, अब इनके बाद इन सारे पैगम्बरों के जिक्र के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया मेहरबानी की, मीना नबी की ना नबियों में से, यानी ये सब अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ताला ने क्या इनाम किया कि इनको नबी बनाया, ये नहीं इनाम है कि इनको अल्लाह ताला ने बहुत पैसा दे दिया। नबी बनाया ये जुर्रियत आदम में से हैं, यानी जैसे इदरीस अलैहिस्सलाम, व मिमन हमलना मा नूह, और जिनको नूह अलैहिस्सलाम के साथ कश्ती में सवार किया उनकी औलाद में से हैं, क्योंकि आपको पता है उन्हीं से आगे फिर दुनिया चली थी। व मिन जुर्रियत इब्राहिम, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, जैसे इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक वगैरह। व इसराइल, और इसराइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से। इसराइल लफ्ज़ को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था। तो इनसे आगे देखें फिर जितने नबी आए, जैसे इनसे आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये सारे इनके से ही आगे आए, और बहुत सारे और भी नबी, जकरिया अलैहिस्सलाम, यहया, ईसा, ये सब। व मिम्मन हदईना वजतबईना, इनको हमने हिदायत दी और इनको हमने चुन लिया। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान, जब इनके ऊपर रहमान की आयात पढ़ी जाती, तो हालांकि ये अल्लाह के नबी इतने ऊंचे मकामात वाले थे ये खुद, लेकिन जब इनके सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाती थी तो खर्रू सुज्जदन, तो इनकी हालत ये होती थी कि ये सजदे में चले जाते थे, सजदे में गिर पड़ते थे बेख्तियार होके, क्योंकि दिल के ऊपर आयतें उतरती हैं ना, दिल पे लेते थे और रुकिया और रोते थे ये। इनकी अल्लाह ताला ने ये एक सिफत बयान फरमाई है कि इतना खौफे खुदा रखने वाले थे, इतना ज्यादा अल्लाह की आयात को समझने वाले और दिल पे लेने वाले थे कि उनका ये रिएक्शन होता था। ये है आयते सजदा, जब आप इसको सुने तो सजदा किया करें। हजरत उमर फरमाते हैं जब ये आयत पढ़ते और फिर सजदा किया तो आगे से क्या फरमाया, सजदे से उठे तो फरमाया सजदा को कर लिया, लेकिन रोना कहाँ से लाए। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने तो फरमाया वो सजदा भी करते थे और रोते थे सजदे में, और सजदों में रोना भी पसंदीदा है कि इंसान सजदे के अंदर रोए, अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाए, अल्लाह से दुआएं करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दुआ करो तो रो, और रोना ना आए तो रोनी सूरत ही बना लो। इंसान रोए, और देखें सहाबा कराम के बारे में तो आता है जब कुरान पाक की तिलावत करते थे तो जमात करा रहे होते थे, हजरत उमर के बारे में आता है कि इमामत कर रहे होते थे और इतना रोते थे कि आपके रोने की आवाज पीछे सफों तक जा रही थी। और वो ये नहीं शर्माते थे कि हम मर्द हैं तो हम क्यों रोए, हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, मैं किसी के सामने कि आज हमने इसको भी बड़ा मसला बना लिया, यानी बेकार चीजों को ना मर्दानगी कह दिया, बेकार चीजों को उठा के ये सोच लिया कि ये तो मेरी इज्जत का सवाल है। अगर कोई मर्द भी रो, कितनी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप रो पड़े, कितनी दफा आपके सहाबा के बारे में आता है, उन्होंने तो नहीं ये सोचा कि हमारी मर्दानगी के खिलाफ हो जाएगा। आज कोई मर्द आंसू बहा ले तो कहते हैं तुम मर्द बनो, रो रहे हो तुम औरतों की तरह। ये कोई भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि इंसान की आंख का जामिद हो जाना उसके दिल की सख्ती की अलामत है। दिल सख्त हो गया इसका मतलब, अगर आपकी आंख से आंसू नहीं निकलता और आपको रोना नहीं आता, तो कुरान की आयात सुन के, रहमान की आयात सुन के जब तिलावत की जाए रोना तो आएगा तब ना जब समझ आती हो, जब समझ ही ना आएगी तो रोना क्या आएगा। इसीलिए तो इमाम और रोते जाते हैं पीछे, मुक्तदी खड़े हुए बस हाथ बांधते, पता नहीं इनको क्या बात हो गई, ये क्यों इतना रो रहे हैं, समझ ही नहीं आ रही। तो ये भी अंबिया का तरीका था, सोचें अगर आपको कभी कुरान की आयात सुन के या पढ़ के रोना आ जाए ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए, इसका मतलब है कि अभी दिल में नरमी है, अभी दिल सख्त नहीं हुए, और इसका मतलब आपने भी अंबिया की सुन्नत अपनाई है। तो जब पहले तो कुरान पढ़े, उसको खोलें, दूसरा उसको समझ के पढ़े, और फिर उसको दिल से पढ़े, तब ये रिएक्शन हो सकता है। अल्लाह अकबर, फखलफा, लेकिन फिर इतने अजीम पैगंबर हैं, इनके बाद क्या हुआ, इनके बाद मिम बादिहिम खल्फुन, इनके बाद कुछ फॉलोअर्स आए, खल्फुन बुरे जानशीन। मैंने आपको जैसे बताया कि जो बुरे जानशीन है ना उनके लिए लाम के ऊपर सुकून के साथ खल्फ आता है, जैसे सलफ और सल्फ है। सलफ जो कहते हैं, जो पीछे आने वाले अच्छे, जो पहले गुजरे अच्छे लोग, और सल्फ जो लाम के ऊपर सुकून के साथ कि जो पहले गुजरे हुए बुरे लोग, इसी तरह खल्फ जो बाद में आने वाले बुरे लोग। इसीलिए सलफ सालेहीन कहना चाहिए, सल्फ सालेहीन, सल्फ नहीं कहना चाहिए हमारे सल्फ, हमारे सल्फ साले नहीं, वो बुरे के लिए होता है, ठीक है। तो खल्फुन, उनके बाद आए कुछ ऐसे ना हंजार लोग, ऐसे ना खल्फ जानशीन आए। इनकी नस्लों के अंदर भी सारे थोड़ी नेक थे, तो उन्होंने फिर क्या किया, अदाउसला जाया कर दी नमाज। जाया करना नमाज को क्या होता है, नमाज के बारे में केयरलेस होना, नमाज को निगलेक्ट कर देना, नमाज को वक्त पे ना पढ़ना, नमाज में खुशू ना होना, या नमाज में कोई तवज्जो, कोई फोकस नहीं है, बेवक्ती नमाजें पढ़ रहे हैं, जमा करके नमाजें पढ़ रहे हैं, एक साथ ही सारी नमाजें पढ़ ली, या पढ़ी ही नहीं, या कभी कोई पढ़ी कभी कोई नहीं पढ़ी, ये सारा कुछ नमाज को जाया कर देना। यानी नमाज भी एक कीमती चीज है, इसको उन्होंने जाया कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और इससे नमाज की अहमियत का हमें अंदाजा हो सकता है कि नमाज कितनी बड़ी चीज है, जिसको अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि खल्फ आए, यानी ये लोग बुरे जानशीन थे, वो खुद तो नेक लोग थे, लेकिन इनके पीछे सारे सारी नस्लें। तो बाज दफा ऐसी नहीं होती, बाज दफा वालदेन कुछ कहते भी रहे लेकिन नहीं वो सुनते, तो ऐसे भी लोग थे। अच्छा, अब अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने नमाजों को जाया कर दिया, और उन्होंने क्या किया, वत्तबाउ शहवात, तो और उन्होंने शहवतों के पीछे पड़ गए, ख्वाहिशात के पीछे पड़ गए। असल में जब इंसान ख्वाहिशात का बंदा बन जाता है ना, क्या उसको नमाज याद रहेगी, तभी फिर नमाजें भी छूटने लगती है। ख्वाहिशात के बंदे कैसे इंसान बनते हैं, ख्वाहिशात के पीछे अपना आप लगा देना, ख्वाहिशात के अंदर इतनी, चाहे वो ख्वाहिशात घरों की है, चाहे जेवरों की है, चाहे जॉबों की है, चाहे बिजनेसेस की है, बस ख्वाहिशात है मेरी कि ये इतनी चीज। उसमें एक होता है हद के अंदर रहना, जब ख्वाहिश नफ्स कोई चीज बन जाती है ना, तो हद से निकल जाती है। रिस्क हलाल कमाना नेकी है, इबादत है, लेकिन जब ख्वाहिशात, जब लस्ट हो जाए ना, तो इंसान फिर किसी हद पे नहीं रुकता, फिर वो कहता है कि नमाज जाए तो जाए, मेरा काम ना जाए। अब ये देखिए ना, जब इंसान नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होता है, और नमाज में सुस्ती आती है ना, अल्लाह से ताल्लुक की उसमें कमजोरी आने लगती है, अल्लाह से ताल्लुक खत्म होने लगता है। तो नमाज से बेपरवाही इंसान को कहाँ तक ले जाती है, और उसके पीछे क्या चीज है, ये ख्वाहिशात है। ख्वाहिशात इंसान को कहीं का नहीं रहने देती। अब आपको अगर मिसाल के तौर पर घर की ख्वाहिशात नहीं आपको लिया हुआ, हर वक्त उसी की फिक्र, उसी के काम, उसी की चीजें, तो फिर जब ख्वाहिशात का गलबा दिल पे हो जाता है ना, इंसान फिर किसी हद पे नहीं रुकता, फिर ख्वाहिशात तो बढ़ती ही जाती है, फिर नमाज में कमजोरी है कि आपको चाहे ख्वाहिशात में ख्वाहिश हो जाए आपको एंटरटेनमेंट की, या बस इसमें मुझे मजा आता है, अब वो ड्रामों के आगे, फिल्मों के आगे, इंटरनेट के आगे, और इसके आगे ये जो नॉवल है, अफसाने, इसके अंदर पढ़ गए, अब बस ये ख्वाहिशात हैं, तो इसमें से कहाँ टाइम निकलेगा नमाज के लिए। अच्छा, अभी नमाज पढ़ते हैं, अच्छा अभी पढ़ते हैं, अच्छा अभी पढ़ते हैं, चलो टाइम ही गुजर गया। तो घरों के अंदर भी ख्वाहिशात ही ख्वाहिशात होती हैं, जो इंसान को फिर नमाजों से दूर करते हैं। घर से बाहर निकले वहां पे तो इतनी ख्वाहिशात की भरमार है, कि जो डिस्ट्रैक्शंस है, तो जो इंसान ख्वाहिशात के ऊपर जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है ना, मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, फिर उसकी नमाजें नहीं हो सकती, वो नमाजों को नहीं, या नमाज पढ़ेगा भी तो नमाज में खुशू नहीं होगा, नमाज में जल्दबाजी होगी, नमाज में बेपरवाही होगी, क्योंकि जाहिर है दिमाग पे क्या सवार है, वो ख्वाहिश। आप एक ड्रामा देख रहे हैं ना, आप उसको बीच में पॉज करके जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए भी, अगर उठ भी गए तो दिमाग में क्या चलता रहता है, सारी नमाज ड्रामे में ही गुजरती है, और फिर भी कान वहीं लगे होते हैं कि कम ड्रामा वापस आ जाए, तो ये ना हो कि हमारी कोई एक एक मिनट की भी डायलॉग रह जाए। जिस इंसान की ख्वाहिशात ही उसका बिजनेस, पैसा 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 रह जाए, वो नमाज भी पढ़ेगा उसमें भी उसको पैसा ही याद रहेगा। तो आपकी जो जो ख्वाहिशात है ना, वो जब ओवरकम कर लेती हैं, और जब इंसान ख्वाहिशात का जब इत्तेबा करता है ख्वाहिशात की, तो फिर तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, एक ख्वाहिश पूरी होनी दूसरी शुरू हो जाती। आप देख लेना, आप एक गाड़ी ले लेंगे, आप उसको कितनी ख्वाहिश से, कितनी चाहत से लेते हैं, थोड़े दिन बाद उसकी दूसरी गाड़ी देख ली, वो अब मुझे पसंद आ रही है, अब ये नहीं, ये नहीं, अब वो, अब उसके पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। अब वो जब तक मिल ना जाए चैन नहीं आना, अब जिस दिन मिल गई उस दिन फिर किसी तीसरी की तरफ चल पड़ेंगे। मुझे बताएं, ऐसे बंदे को जो ख्वाहिशात में जिंदगी गुजार रहा है, आप इसको जिस जगह पे भी रख लें, आप जिस जगह पे भी रख लें, आप, आपको अगर ये ख्वाहिश है ना कि मैंने बस अप टू डेट रहना, जो आजकल चीज इन है वो रहना देखनी, आप सारा दिन वो देखते ही रहेंगे, आजकल क्या इन है, अब मैं ये चीज ले लूं, आजकल ये चीज इन है, आजकल वो चीज आउटडेट हो गई, आजकल वो, मैंने तो बस अपडेटेड रहना है हर चीज के बारे में। आप उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर ही सारा दिन निगा देंगे, आपका दिमाग उसी में चलता रहेगा फिर। तो जिस चीज की भी ख्वाहिश, अब हर एक की चूंकि डिफरेंट है, जो भी है आपकी ख्वाहिश, अगर आप ख्वाहिश के बंदे बन गए तो नमाजें तो नहीं फिर रहती, नमाजों में सुस्ती जरूर आएगी। एक दफा का वाकया बयान होता है तफसीरों में कि सईदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा, बड़ी लापरवाही से नमाज पढ़ रहा था, और नमाज में खुशू भी नहीं था, सुकून भी नहीं था, जल्दी 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 रुकू सजदा बस जल्दी जल्दी कर रहा। तो जब उसने नमाज पढ़ी तो उसे पूछा कि तुमने कि ये ऐसी नमाज पढ़ी है, कब से ऐसी नमाज पढ़ रहे है? उसने कहा 40 साल से। कहते तुमने 40 साल से नमाज ही नहीं पढ़ी, नमाज ही नहीं पढ़ी तुमने, यानी इस तरह की नमाज तो नमाज है ही नहीं। और अगर तुम इसी पे मर जाते और इसी तरह की नमाज पढ़ते हुए दुनिया से चले जाते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए दीन से हट कर जाते। इतनी बड़ी बात है नमाज को जाया करना, और ये दिल की ख्वाहिशात की वजह से जाया होती, ये ख्वाहिशात इंसान को लिए डूबती। आयरा जब ख्वाहिशात इतनी आपके दिमाग के पर सवार होंगी, वो जो भी ख्वाहिशात है, मैंने तो एक दो की एग्जांपल दी है, हर एक की अपनी अपनी होती है, वो उसकी कमजोरियां बन जाती, फिर नमाज में वो जरूर आती। तो उन्होंने जाया कर दिया नमाजों को, कहीं उन्हें तो छोड़ ही दिया। और मुसलमान और काफिर में तो फर्क ही है कि वो नमाज, मुसलमान जो होता है वो नमाज पढ़ता और काफिर नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह अकबर। हदीस में आता है कि तबरानी में यह हदीस है कि जब इंसान खुशू खुजू से वक्त पे नमाज पढ़ता है तो ये नमाज अपने पढ़ने वाले के, जब वो पढ़ लेता है ना उसको, तो नमाज वो ऊपर को जाती है, आसमान की तरफ जाती है, वहां कबूलियत का दर्जा पाती है, और वहां जाके वो दुआ करती है, अल्लाह तू उसकी हिफाजत करना जिसने मेरी हिफाजत की। और अगर वो नमाज बुरे तरीके से पढ़ता है, बगैर खुशू खुजू के, जल्दबाजी से पढ़ता है, बेवक्त पढ़ता है, तो वो जो पढ़ लेता है ना तो नमाज ऊपर को जाती है, वहां से रिजेक्ट हो जाती है, तो वो नमाज बद्दुआ देती है कि अल्लाह इसका सत्यानाश कर दे जिसने मेरा सत्यानाश किया है, मुझे बर्बाद किया उसको बर्बाद कर। तो जो हमारे अमल है ना, ये हमारे तक बस ऐसे नहीं रह जाते, हमने कर लिया बस खत्म हो गया, नहीं, इसके नताइज हैं, इसका कोई रिजल्ट निकलता है, ये ऐसी बेजान सी चीजें नहीं है, ये भी ऐसी चीजें जो हमारे अमल भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ हमारे हक में बोल रहे हैं, कुछ हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। तो इसलिए नमाज को अच्छे तरीके से पढ़े ताकि हमें दुआएं दे। हजरत अली से शहवात के बारे में पूछा गया कि बंदा शहवात के पीछे कैसे जाता है, तो फरमाया ये वो आदमी है जो बड़े बड़े महल्लात बनाता है, इमारतें बनाता है, मैंने कभी अब मेरा 2 बेडरूम का, फिर मैंने अब 3 बेडरूम का घर लेना, फिर मैंने 4 का लेना, फिर मैंने एक वहां पे विला लेना, फिर वहां पे भी एक अपार्टमेंट खरीद लेती हूँ, चलो वहां पे भी एक जायदाद खरीद लेती हूँ, चलो वहां पे भी एक, इस तरह आगे से आगे। और वो है जो ऐसी सवारी पर सवार होता है जिसको लोग देखते रह जाए, मैंने वाह क्या गाड़ी है, इसकी गाड़ी देखो लेटेस्ट मॉडल की, और वो उसमें बैठ के कितना फखर से बैठा, और ये ऐसा बंदा है जो ऐसे कपड़े पहने जिसकी बहुत शोहरत हो, यानी फलां ब्रांड नेम के कपड़े इसने पहने हुए, फलां लोग मुझे देखेंगे तो मेरे ब्रांड नेम को, जाहिर है यही बंदा है जो ख्वाहिशात का बंदा है ना, जो अपने गाड़ी और घर और कपड़ों के, जाहिर है वो इतना उसके अंदर वो इन्वॉल्व है तो तभी ऐसी चीजें वो ले रहा है। अब वो जो इस दौड़ में पड़ गया ना कि बस जो कपड़े वो पहने हो जिसकी शोहरत हो, जो वो गाड़ी हो जो लोग देखते रह जाए, वो हो कि घर एक के बाद एक बन रहा हो, मुझे बताएं वो कि उसकी नमाजों का क्या हाल होगा। और फिर ऐसे बंदे जो ये नमाजें भी जाया करें और ख्वाहिशात के बंदे, इसको तो आज कुछ कोई समझता ही नहीं ना, क्योंकि कि वर्ल्ड ही ऐसी है जो ऑल द टाइम आपको दिखा रही है ग्लैमर, ख्वाहिशात, ख्वाहिशात के इंसान इनके पीछे भागे, जैसे अल्लाह माफ करे, जैसे क्योंकि भूखे को अगर रोटी लेके भाग रहा हो कोई, तो भूखा उसके पीछे जुबान निकाल के भाग रहा हो, इस तरह से समझ लें। हर तरफ आप ये खोलें, आपको इतने इश्तेहार मिलते हैं इंटरनेट पे, ये चीज आ गई, ये फलां, ये फैशन, ये कपड़ा, ये जूता, ये चीज, कि इंसान जो है ना, मतलब कोई ही है जो अपने आप को इन चीजों से बचा के रख सकता है ख्वाहिशात से, वरना इंसान का दिल ख्वाहिशात के पीछे ही लगा रहता है। तो फरमाया फसौफा यलकौना गैया, ऐसे लोग फसौफा अन करीब वो जा मिलेंगे गैया में, अजाब में। सौफा जो है ना, थोड़ा सा मुस्तकबिल बाईद का माना देता है, यानी ये कर लें जो कर रहे हैं आज, ये ख्वाहिशात के पीछे कुछ भी नहीं इनको हो रहा। इंसान सोचता है मुझे क्या हो रहा है, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, मैं नमाज नहीं भी पढ़ती या ऐसी भी पढ़ती हूँ, क्या फर्क पड़ जाता। फसौफा है ना, सा नहीं है, सा होता तो अल्लाह ताला अभी हमारा ये कर देता, लेकिन सौफा है, अन करीब ऐसा वक्त आएगा, आज मजे कर लो लेकिन फिर ऐसा वक्त आएगा कि अजाब है आगे। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। इब्ने अब्बास कहते हैं कि गैया ऐसी वादी है जिसमें वो लोग जाएंगे जो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते रहे, और इसके बारे में आता है कि ये कुआं है, कुएं हैं दो जिनको यहाँ पे गैया कहा गया है, ये दो कुएं हैं जहन्नुम के अंदर, जहां जहन्नमियों का लहू और पीप जमा होता है। अस्तग़फिरुल्लाह। आपसे सलाम ने फरमाया, अगर 10 सोकिया के वजन का कोई पत्थर जहन्नुम के किनारे से जहन्नुम में फेंका जाए तो वो 50 साल तक जहन्नुम की तह में नहीं पहुंच सकता, और फिर उसके बाद वो गैया में जाएगा और आसाम में जाएगा जो वहां के दो कुएं हैं, और ये एक वादी भी है जो बहुत गहरी है और इंतहाई सख्त अजाबों वाली है, इसमें खून और पीप भरा हुआ है, ये भी कहा गया। और गैया का माना नुकसान भी है, और बुराई हलाकत भी है, यानी हर तरह से ये बुरा, तो फिर उनको इस अंजाम से पहुंचना। तो ख्वाहिशात के बंदे नहीं बनना, ख्वाहिशात के पीछे ही जिंदगी नहीं गुजार देनी, एक ख्वाहिशात, दूसरी ख्वाहिश, तीसरी ख्वाहिश, बस ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ये बस यानी ऑल द टाइम हम बस इन्हीं चीजों के अंदर खोए रहे। अस्तग़फिरुल्लाह। तो इब्ने अब्बास ये भी फरमाते हैं कि ऐसी वादी में वो लोग जाएंगे, वो ख्वाहिशात के बंदे, ख्वाहिशात के बंदे कौन होते हैं वो बताते हैं, बदकार जो अपनी बदकारी पे ही चलता रहे, वो शराबी जो शराब ही पीता रहे, कभी उसने छोड़ने का सोचा ही नहीं, या वो सूद खाने वाला जो सूद से नहीं निकलता, या जो वालदैन का नाफरमान है, या जो शाहिद जूर है यानी जूर को देखने वाला, झूठ को देखने वाला, झूठ का स्पेक्टेटर, झूठ ही है जो ये सारी चीजें जो इंटरनेट पे, ये झूठ है, जितने ड्रामे फिल्में सब झूठ है, उनको देखने वाला, या शादीशुदा औरत जो अपने शोहर के नाम पे वो बच्चा लगा दे जो उसके खामिद का नहीं है, वो उसको कह दे कि ये इसका बच्चा है, ये सारे शहवात के बंदे हैं। इल्ला मन ताबा व आमन व आमिल सालिहन, फिर अल्लाह ताला ने एक रास्ता बता दिया कि देखो अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी इससे निकल आओ, अगर नमाजें जाया होती हैं या ख्वाहिशात के बंदे ना बनो, इस नफ्स के पीछे ना चलो, नफ्स जो हमें कहता है ना, ख्वाहिश करता है, हम बस उसके पीछे अंधाधुंध चल पड़ते। अब नफ्स तो ख्वाहिशात करता रहेगा, कहते हैं ख्वाहिश के पीछे चलने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे खारिश ज्यादा आदमी होता है ना, वो खारिश जितनी करता है उसकी ख्वाहिश बढ़ती जाती है, इसीलिए वो कहते हैं हम खारिश ना करें, ऐसे जो मरीज होते हैं, तो इसकी ख्वाहिशात कभी नहीं खत्म होनी, इसलिए इसके बंदे बनना ही नहीं है। अब वो शुगल मेले में नमाज लेट हो रही है, नमाज जा रही है, या ऐसे कामों के पीछे जो ख्वाहिशात के पे मबनी है, नमाज जा रही है, लेकिन इंसान कहता है नमाज जाए तो जाए, मगर ये मैं तो इस वक्त ये कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। फाउलाए का यदखुलून अल्जन्नत अल्लाह युजलमून शई आ, यही लोग हैं जो दाखिल होंगे, जो तौबा कर लें और ईमान ले आए और अपना अमल सही कर लें, तो वो फिर जन्नत में दाखिल होंगे, और नहीं वहां पे उनके ऊपर कोई जुल्म भी नहीं किया जाएगा, यानी तौबा शर्त है, निकल आओ इससे, पलट आओ इससे, छोड़ दो ये चीजें और वापस अल्लाह की तरफ आ जाओ, इनको कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी किसी का गुनाह इनके सर नहीं थोप दिया जाएगा, और ना ही ऐसा किया जाएगा कोई नेकी इनको ना अजर दी जाए, ऐसा नहीं होगा। जन्नत आदने, हमेश की जन्नतें, अल्लती वादर रहमान, देखिए फिर रहमान अल्लाह ताला का ये नाम आया, अल्लाह की रहमत ही होगी तो इंसान जन्नत में जा सकता है। ये है जिसका वादा रहमान ने किया, क्योंकि इंसान अपने अमल से तो नहीं जन्नत पा सकता। इबादा वो अपने बंदों से, अपने खास बंदों से अल्लाह ने वादा किया हुआ, बिल गईब, गईब में, ये गैब का वादा है, यानी तुम इस वादे को यकीन कर दो। ये अभी आपको दिखाया नहीं जा सकता, जो यकीन कर लेगा ना गैब पे, वो ही फिर इस वादे के मुताबिक इसको सच समझ के और फिर इस दुनिया में कोशिश करे। और ये चीजें गैब में है, ये भी दूसरा माना है कि ये सब कुछ गैब है, जो ये जन्नत की बातें हैं और ये वादा गैब है, ये है वादा रहमान का। तो रहमान के वादे के ऊपर जिसको यकीन है वो फिर इस जन्नत के लिए कोशिश करेगा जरूर। इसको पता है कि अगर मैं नेकियां करूंगा, ईमान ला के तौबा कर लूंगा, मुझे वो जन्नत हासिल होगी। इन्नहु काना वादुहु वादुहु मातिया, ये है वादा जो आने वाला है, ये होके रहेगा, ये अल्लाह का वादा है। ला यस्मऊना फीहा लगवन इल्ला सलामा, वो ऐसी जन्नत है जिसमें कोई लग बात तो है ही नहीं है। लग बात मतलब है कोई कीने, कोई बोगस, कोई फजूल बातें, कोई हर्टिंग बातें, कोई ताने, कोई गालियां, कोई झगड़े, ये बातें तो है ही नहीं वहां पे। सिर्फ सलाम ही, सलामती सलामती, हर तरफ से सलामती। जन्नत का माहौल तो इतना पाकीजा है कि अगर दो मुसलमान एक दूसरे से गुस्सा किए हैं, झगड़े हुए हैं, और वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं इसी हाल में, और दोनों बहुत नेक हैं, तो अल्लाह ताला जन्नत में पहुंचाने से पहले उनके दिल को साफ कराएगा, ताकि ये कदूरते और नफरतें लेके जन्नत में ना जाए। तो जन्नत का माहौल बहुत पाक साफ है। और लघव का एक माना ये भी है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, मैं इस बात को पढ़ के बड़ी परेशान हुई, कि लघव का एक माना ये भी है कि दो दोस्त बैठे हुए, दो तीन दोस्त बैठे हुए, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं किया, अल्लाह को याद नहीं किया ना अपनी बातों में, तो ये भी लघव है। अल्लाह अकबर। और जो सूरह मोमिनून में मोमिनों की सिफत अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, तो वो लघव से भी एराज करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अगर कितनी मजलिसों में हम बैठते हैं, अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते, तो हम लघव में उठ के आ गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो ये जन्नत के अंदर तो लघव है ही नहीं, लघव है ही नहीं, वो इतनी, इसका मतलब ये बुरी चीज है ना लघव, तो वहां पे नहीं है ये। तो हम अपनी मजलिसों को देखें कि कितनी मजलिसें हमारी लघवियात पे मबनी है। अल्लाह हम रिस्क को हम फीहा बुक कराता हूँ आशिया, और उनके लिए वहां पे रिस्क होगा सुबह शाम। सुबह शाम का मतलब रिस्क ये मतलब नहीं, एक ये मतलब नहीं कि सुबह होगी वहां पे जन्नत में और एक शाम हो जाए करेगी, फिर रात हो जाए करेगी। जन्नत में रात नहीं है, ठीक है, रात नहीं है जन्नत में। हाँ, मगर एक ज़ईफ़ हदीस है, अब वही मैं आपको बता देती हूँ, कि एक आदमी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो है जन्नत में क्या रात होगी। आपने फरमाया तुमने ये कैसी, क्यों ये बात पूछी है। उसने कहा यहाँ पे लिखा है कि सुबह और शाम उनको में, तो उसके बाद का मतलब रात होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये इस रात नहीं है जन्नत में, मगर जन्नत में एक नूर होगा, एक नूर होगा, और उससे लोगों को पता चलेगा कि अब सुबह शाम का कौन सा जैसे वक्त है ना, उसके मुताबिक वो खुद ही अज्यूम करेंगे कि ये सुबह ये शाम है, वरना वैसे नहीं है रात। वहां पे खास नूर पैदा किया जाएगा जिससे वो तायुन करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि उस वक्त उनको रिस्क दिया है, रिस्क के अंदर सिर्फ ये नहीं कि खाना पीना, रिस्क इंसान की सारी जरूरियात, वो सारी चीजें जिससे इंसान को फायदा मिलता है वो दिया जाएगा। और बुकरा तो आशिया का मतलब सुबह और शाम, तो ये वो मतलब भी है, जैसे हम कहते हैं सुबह शाम ये तो ये काम करती रहती है, सुबह शाम ये तो पढ़ती रहती है। तो सुबह शाम का मतलब ये नहीं होता कि वो 24/7 ही पढ़ती रहती है, सुबह शाम मतलब अक्सरियत वक्त में, अक्सर उसमें वो, यानी ये नहीं मतलब होता कि सुबह है और शाम है तो उस उन टाइम्स पे पढ़ रही है, बल्कि अक्सरियत वक्त ये पढ़ती रहती है। तो एक मुहावरतन भी बोला जाता है ना, तो यानी सुबह शाम उनको रिस्क, यानी हर वक्त उनको रिस्क की फरावानी होगी। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिथु मिन इबादिना, ये है वो जन्नत जिसका हम वारिस बना देंगे अपने बंदों में से। मन कान तकिया, जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा, जो अल्लाह से डरने वाला होगा। मुत्तकी कौन होता है, वो जो गुनाह करते वक्त डर जाए कि मैंने नहीं करना, अल्लाह ने इससे मना किया, ये गलत है, ये मैंने पढ़ा था, ये हराम है, ये गुनाह है, ये अल्लाह की नाफरमानी है, ये मैंने नहीं करनी, ये होता है मुत्तकी, जो गुनाह करते वक्त डर जाए। ये नहीं ये गुनाह कर लें या पहले सोचें कोई बात नहीं कर लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे, ये क्या फिर इसका मतलब, तकवा कहाँ है, खुदा खौफी कहाँ है। तो यानी इसका मतलब है खुदा खौफी रखने वाला, जिसमें अल्लाह का डर हो, वो मुत्तकी होता है, वो जन्नत में जाएंगे। और देखें यहाँ पे ये नहीं कहा गया नमाजी जन्नत में जाएंगे, सिर्फ ये नहीं कहा गया। खुदा खौफी, इसलिए कि बाज दफा बाज लोग नमाजें पढ़ते भी हैं लेकिन दूसरे मामला में कोई खुदा खौफी उनके अंदर है ही नहीं। लोग उनके साथ जो मामला कर रहे हैं, उनके साथ जो फ्रॉड कर रहे हैं, उनके साथ जो झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ जो जुल्म कर रहे हैं, उनको जो हर्ट कर रहे हैं, उनके साथ जो रवैये रख रहे हैं, तो इंसान हैरान होता है कि हाय ये नमाजें पढ़ के भी ऐसे कर रहे हैं, ये नमाजें पढ़ के भी इनके ये रवैये हैं और ये तरीके का है। तो अल्लाह ताला ने नमाजों को नहीं देखना, तकवा को देखना है। नमाजों को सिर्फ नहीं देखना, नमाजें तो देखनी है उसने, लेकिन तकवा देखना। तकवा होगा तो नमाजें भी ठीक होंगी, तकवा नहीं होगा तो नमाज भी वैसी ही होगी। फिर मसल्ले पे खड़े होकर भी इंसान को खुदा खौफी होनी चाहिए, तभी खुशू आएगा ना, तभी तवज्जो होगी ना। तो तकवा जरूरी है कि इंसान तकवा लेकर जाए अल्लाह ताला के पास, तब सारे ही मामलात सही हो जाएंगे, चाहे वो नमाजें हैं, चाहे वो क्लास है, चाहे वो लोगों से रवैये हैं। जिस दिन तकवा आ गया, वह माना था नज़लु इल्ला भी अमरी रब्बिक, और नहीं हम नासिल होते मगर तेरे रब के हुक्म से। अब ये क्या था, इसके बारे में आता है कि आप बुखारी में रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा जिब्राइल अलैहि सलाम तशरीफ लाए तो आपने फरमाया कि आप जितना आते हैं इससे ज्यादा नहीं आ सकते, इससे ज्यादा क्यों नहीं आते। उसके जवाब में ये आया तो उतरी के अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन ये फरिश्ते फरमा रहे हैं, फरिश्ते कह रहे हैं कि हम नाजिल नहीं होते मगर अपने रब के हुक्म से। अगर यानी हमारी देर भी है आने में तो वो इस वजह से नहीं है कि हम नहीं चाहते आना, बल्कि इस वजह से कि अल्लाह का जब हुक्म होगा तब हम आ सकते हैं। लहू मा बैना ईदीना व मा खल्फना व मा बैना जालिक, वो ही है जो हमारे आगे है, जो हमारे पीछे है और जो हमारे दरमियान है। यानी सब कुछ इसी का तो है, जब उसका हुक्म हो तब हम उतरेंगे। सुभान अल्लाह। और सारे यानी उमूर, सारे काम उसी के कब्जे में है, दुनिया के भी और आखरत के भी और जो इसके दरमियान है वो भी सब। और एक रिवायत इब्ने कसीर ने ये लिखी है अपनी उसमें इब्ने अभी हातिम से कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आने में देर लगाई तो आपसे सरम ने पूछा, वजह पूछी तो जवाब दिया कि जब लोग नाखून नहीं कुतरवाते और उंगलियां और पोरे साफ नहीं रखते और मूछें पस्त नहीं करते और मिसवाक नहीं करते तो हम कैसे आ सकते हैं। ये आयत है यानी उनको ये गंदगियां नहीं पसंद ना। और आज देखें आदमियों मूछें सबसे ज्यादा रखते हैं और सबसे अफसोस दुख इस बात का होता है, मूछ को कहते हैं मूछ नहीं तो पता नहीं क्या कुछ नहीं। तो हमें कहा गया कि मर्द मुसलमान जो मर्द है वो मूछों को पस्त करें, कम करें, और मूछ रख लेते हैं दाढ़ी साफ कर देते हैं, वो दाढ़ी रखने का हुक्म और मूछों को कम करने का उलट करते हैं, बिल्कुल उलट, और मिसवाक ही नहीं करते, और नाखून ही नाखून कितने लंबे लंबे रखे होते हैं, उसको कोई बुराई नहीं सोचते। तो वो कहते कि ये नहीं और इसलिए नहीं हम आए। और बाकी जो रिवायत मैंने आपको बता दिया, वमा क्या ना रब्बुक का नसीया, और नहीं है तेरा रब भूलने वाला। यानी ये ना समझना कि अल्लाह ताला आपको भूल गया है। मा वद्दा का रब्बू का वमा कला, आपका रब आपको ना उसने छोड़ा है और ना आपसे नाराज हुआ है, वो भूला नहीं है, वो भूल से पाक है। ऐसा नहीं कि वो भूल ही गया आपको। जब इंसान ना तकलीफ में होता है तो उसको लगता है कि पता नहीं अल्लाह ताला को मेरा याद भी है कि नहीं, पता नहीं उसको मेरा ख्याल भी है कि नहीं। तो इंसान ये भी देखे ना, मक्की सूरत है ना, उस वक्त हालात कैसे थे और उस वक्त तसल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज से होती थी। कोई बाप नहीं था, कोई माँ नहीं थी, कोई और ऐसा गम गुजार नहीं था। इंसानों में हो भी तो इंसान को वो तसल्ली नहीं मिल सकती। तो इतने मुश्किल हालात के अंदर तसल्ली किससे मिलती थी, जब अल्लाह की तरफ से वही आती थी। ऐसे ही है ना जैसे कि आप इतने परेशान बैठे हो, किसी आपके प्यारे का फोन आ जाए और वो कोई ऐसी बातें करे, फिर आपके दिल को इतनी तसल्ली मिल जाए, उसका फोन आते ही आप खुश हो जाते हैं, आपको पता है कि ये मुझे कोई तसल्ली दे। इस तरह उनके लिए था कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आती थी ना तो उनको करार आ जाता था, सुकून आ जाता था। तो वो इसलिए वही का इतना इंतजार करते थे। तो कहा गया आप ये ना फिक्र करें कि अल्लाह पता नहीं आपको भूल गया, अल्लाह ने आपको भूला नहीं है। और ये हम सब के लिए तसल्ली कि अल्लाह भूला नहीं है, वो भूलता नहीं है। हम जितने भी मुश्किल हालात में हो, अल्लाह ताला को पता भी है कि हम किस चीज से गुजर रहे हैं, क्या हमारे दिल पे गुजर रही है, हमारे क्या हालात हैं, हमारे दिन कैसे गुजर रहे हैं, रातें कैसे गुजर रहे हैं, वो सब जानता है, वो भूलता नहीं है। रब السماواتِ والارضِ وما بينهما, رب आसमानों का भी और जमीन का भी और जो कुछ उनके दरमियान है, और रब से अब उस डेफिनेशन को जहन में ले आए जो मैंने आपको बताई है, फाबुद हु, तो फिर इबादत भी उसी की तो होनी चाहिए जब पैदा करने वाला पालने वाला वही, वस्तबिर और जमे रहो, ली इबादत ही उसकी इबादत पे, यानी अल्लाह ताला को पुकारते रहो, हत्ता याती अल यकीन, जब तक कि आपको मौत ना आ जाए उस वक्त तक अल्लाह की इबादत ही करते रहना। और अल्लाह की इबादत करने में भी सब्र चाहिए कि इंसान जमा रहे कि मैंने छोड़ना नहीं है चाहे हालात कुछ भी हो। हल तालम लहु समीया, क्या तुम्हें तो उसके अलावा उसके अलावा भी कोई उसका हम नाम कोई तुम जानते हो कि जो उसके जैसा हो, किसी तरह से भी उस जैसा हो, चाहे नाम में ही हो, किसी तरह से भी कोई उस जैसा है ही नहीं, तो फिर उसकी इबादत होनी चाहिए ना। उस जैसा मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, उस जैसा रहम करने वाला कोई नहीं, उस जैसे केयर करने वाला कोई नहीं, उस जैसा पालने वाला कोई नहीं, उस जैसा ख्याल करने वाला कोई नहीं, उसके जैसा मेहरबान तो कोई हो ही नहीं सकता। तो फिर इबादत उसकी ही करो, उसके आगे ही झुक जाओ। अल्लाह ताला इन आयात को हमारे से कबूल करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا.